जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। गर्व की जय ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले।
ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, काहे तू चिंता को पाले। सुबह समान किसको याद है, सुबह दिया था मैं सर्व फिकरों से फारिग बेफिकर बादशाह आत्मा हूँ। तो इसी पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप यूपी की धरनी मुजफ्फरनगर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया और मम्मा के अव्यक्त होने से एक वर्ष पूर्व 1964 में आपने यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, किंतु उन दिनों इतने साधन नहीं थे, मम्मा से मिले नहीं। लेकिन हाँ, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से एक वर्ष पूर्व 1968 में आप मधुबन में आ गए। तो ब्रह्मा बाबा को जरूर मिले, उनके संग के अनुभव किए और तब से लेकर इसी मधुबन धरनी में रहकर बाबा के तीनों कॉम्प्लेक्स के, कॉम्प्लेक्स तो अभी बने लेकिन बाबा के भंडारे को संभाल रहे हैं वर्तमान में तीनों कॉम्प्लेक्स के। और इसके साथ साथ ज्ञान और योग में बहुत गहरी रुचि होने के कारण बाबा के एक एक महावाक्यों को प्रैक्टिकली उस पर एक्सपेरिमेंट करना और उससे जो फायदा मिला वो सर्व तक पहुंचाना, ताकि जैसे मेरी समस्या हल हुई है ऐसे सब की समस्याएं हल हो जाए। जैसे बाबा के एक एक महावाक्य से हमें बेनिफिट होता है, ऐसे सबको बेनिफिट होता रहे। तो संकल्प शक्ति के प्रयोग आदि आप कराते रहते हैं और जो टीवी के अंदर गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा समस्या से समाधान प्रोग्राम चला, उसमें तो आपने 10 सेंचुरियां लगा दी, पूरे 1000 एपिसोड। तो ऐसे समस्या से समाधान प्रदान करने वाले आज हमें समाधान देंगे, फिकरों से कैसे दूर रहे, बेफिकर बादशाह कैसे बने, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। जिनकी फिकर खुद भगवान करे, बोलो आगे, ठीक है ना?
एक मिनट, जो नीचे बैठ सकते वो सामने आके नीचे बैठे।
तो जिनकी फिकर स्वयं भगवान करे वो अपनी फिक्र क्यों करें? लेकिन सब्जेक्ट इतना सहज नहीं है, या सहज है? सहज नहीं है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मेहनत का है, क्योंकि जो यहां बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे वो अनेक जन्म बादशाह रहेंगे। तो एक ऊंची मंजिल है, स्वराज्य अधिकारी भी बनना है। आगे का महावाक्य सब सुनते ही होंगे, जो स्वराज्य अधिकारी वो वे स्वराज्य अधिकारी। और एक बहुत सुंदर महावाक्य है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जो सहज योगी बन जाएंगे वही विश्व महाराजन बनेंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है सहज योगी बनने पर। निश्चिंत वही व्यक्ति रहता है दुनिया में भी, या तो उसके पास धनमाल बहुत हो या वो व्यक्ति शक्तिशाली बहुत हो। हमारे यहाँ जिसके पास ज्ञान खजाना बहुत है, जिन्होंने ज्ञान की पॉइंट्स को अप्लाई किया है, यूज किया है जीवन में और लंबे काल की प्रैक्टिस की है और शक्तिशाली बने हैं, उनके फिक्र कम भी होते जाते हैं और फिक्रों की बातें भी कम आती हैं। ये एक विशेष अनुभव करना है। स्थिति महान तो चिंताएं बहुत कम, यानी सिचुएशन ही कम आएंगी जो हमें चिंतित करें। हम बोल्ड हैं, शक्तिशाली, साहसी, तो हर चीज को पार कर लेते हैं। परंतु होता क्या है, मनुष्य की कुछ कामनाएं होती हैं। अब वो कामनाएं सदा तो पूरी नहीं होती, वहां गड़बड़ होती है। मान लो आप चाहते हैं आपके परिवार में बिल्कुल अच्छा रहे, लेकिन एक बच्चा गलत राह पे चला जाए, जो आजकल बहुत हो रहा है, तो चिंता होगी या नहीं, थोड़ी या ज्यादा, बोलो ना, खुल के चर्चा करेंगे। ज्यादा होगी, कहने से काम नहीं चलेगा कि कोई चिंता नहीं होगी, चिंता अच्छी तरह से होगी। हम बुरी तरह से न भी कहें, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। निश्चिंत जीवन, कई अच्छे अभ्यास समय करने हैं, कई साधनाएं करनी होंगी, इस लंबी यात्रा को तय करके विजयी बनना ही होगा। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य पीछे मुरली में आ गया है, साकार मुरली में। साकार मुरली में बहुत गहरी गहरी बातें आती हैं। कोई ये ना सोचे बाबा तो वही रिपीट करता रहता है, मुझे याद करो, आत्मा समझो, यही नहीं, बहुत गुह्यता है उनमें। कहा, बच्चे अपने को मेरे हवाले कर दो। अपीलिंग पॉइंट, मजा आ गया सुनते ही मुझे भी। एक मास पहले आई होगी, मैं अपने को, बोलो, करेंगे, सोच लो अच्छी तरह। आज से सभी को किसी हद तक चिंताओं से मुक्त अवश्य होना है। सारी चिंताएं तो धीरे धीरे जाएंगी, नई चिंताएं भी आती हैं, लेकिन हमें एक विधि सीखनी है कि हम अपनी चिंताओं का जो दबाव मन पे रहता है उसको कम करें। उसमें ज्ञान का बल बहुत चाहिए, योग का बल भी चाहिए, लंबे समय की प्रैक्टिस भी चाहिए, अपने को बाबा के हवाले करने की। इसमें यह बात नहीं कि आप स्थूल रूप से समर्पित हो गए, उसका कोई महत्व नहीं, कितना अपने को हवाले किया है उसके, आने वाला समय भी अच्छा होगा या खतरनाक। हाँ, अच्छा तो हम उसे बनाएंगे, नहीं, ठीक कहा इन्होंने, अच्छा भी होगा। और बाबा के शब्दों पर अगर ध्यान दें तो भगवान के सिवाय वो शब्द भी कोई नहीं बोल सकता, ये विनाश बड़ा शुभ है। लोग कहेंगे कौन है ऐसी खराब बात बोलता है, ये विनाश बड़ा कल्याणकारी है। मैंने भी पढ़ा, साकार मुरली में ही आया, ये महाविनाश बड़ा शुभ कार्य है। तो हम भविष्य को भी देखेंगे, हम उसका आह्वान कर रहे हैं, सुंदर दिन आ रहे हैं, इसलिए अच्छा भी होगा। लेकिन अच्छाई आने से पहले गड़बड़ बहुत होगी, इसलिए लंबा काल मेरेपन को समाप्त करने की प्रैक्टिस हो। लिख लो सभी जो लिखना चाहते हैं, लंबा काल मेरापन, मैं तो है ही, मेरापन, मेरेपन का विस्तार भी ज्यादा है। भाई इधर आ जाओ कन्याओं, सब इधर आ जाओ। मेरेपन का विस्तार भी बहुत है, हमें इस पे सूक्ष्म रूप से भी चिंतन करना है। और मोटे जो मेरेपन है उनको भी छोड़ते चलना है। तेजी से हम अच्छे अभ्यास करते चलें। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, 5 साल से ज्यादा ज्ञान में कौन कौन है, ताकि मैं उसी तरह से बात करूं। अच्छा, बहुत हैं। 10 साल से ज्यादा, वो भी बहुत हैं। 2 साल से कम, थोड़े हैं, ठीक है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें कर दें और कोई नया ही ज्ञान में हो, सिर के ऊपर से उतर जाएगी। अब होमवर्क करेंगे सभी, चाहे यहीं कर लेना, चाहे जाकर कर लेना। कहां कहां मेरापन रहता है, मैं शुरू कर देता हूं कुछ चीजें। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धंधा, मेरा पैसा, मेरी ज्वेलरी, माताओं का ज्यादा रहता है थोड़ा सा, हर चीज जो मेरी है। पहले तो मेरा क्या है, शरीर, इससे जितना डिटैच होंगे बाकी मेरा आप ही हल्का हो जाएगा। अपनों अपनी चीजों से मनुष्य को आसक्ति तो रहती है, वो रहेगी, लंबा काल से चली आ रही है। हमारे पास एक छोटा सा पेन भी है, बड़ा अच्छा चलता है, उसमें भी हमारी आसक्ति होती है, जरा इधर उधर हो जाए, खोए नहीं तो भी सोचने लगते हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया, कब मिलेगा, इतना अच्छा पेन था। तो मेरा और बाबा के महावाक्य हैं, जहां से ये बात बहुत ज्यादा बाबा ने ली है, हम सबको दी है। वो बाबा के महावाक्य थे, 10-12 साल पहले की है, उससे पहले भी आती थी, लेकिन उस दिन कोई बात हो गई थी 3-4 दिन पहले, तो अव्यक्त बाबा आए थे, तो बाबा ने ये शब्द बोले और इसकी सबको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मेरे को तेरे में बदलो, मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर बन जाओ बेफिक्र बादशाह। ये महावाक्य थे। हाँ, एक लाइन और थी बीच में, फिकर बाप को देकर फखुर लेकर, फखुर माना नशा, ईश्वरीय नशा, बन जाओ बेफिक्र बादशाह। तो एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। फकुर कौन सा होना चाहिए हमें इस संबंध में, और कुछ और कुछ, जिसको रोज बढ़ाना है सबको। कौन मुझे साथ दे रहा है, यह आवाज गूंजे, ऐसी गूंजने लगे कि समय पे याद आए, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने साथ देने का वचन दिया है। तो हम बीच बीच में योग अभ्यास भी करेंगे, इससे ही जुड़े हुए 7:30 तक हैं। सभी मन के सारे बोझ बाबा को देंगे, क्योंकि बेफिक्र होने के लिए हल्के होना, शक्तिशाली होना भी, हल्के होना भी बहुत जरूरी है। इस संसार में ब्राह्मणों में थोड़े कम, लेकिन संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई बोझ लेकर ही घूम रहा है। किसी पर पास्ट का बोझ है, सोच लो अब हमारे पे क्या है, पास खराब बीता है, मेरे पास आती हैं ये घटनाएं, ये केसेज, पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हैं। बचपन से कुछ ऐसा हो गया कि वो मानस पटल पर जैसे पिक्चर घूमती रहती है, उसे मुक्त नहीं हो रहे हैं। पास्ट का बोझ है, दबाव है, अब इस दबाव को हटाना है। या वर्तमान में किसी ने हमको सताया है, बुरा व्यवहार किया है, सोचेंगे सभी, केवल सुनेंगे नहीं। परिवारों में क्या क्या होता है, किसी को सास सताती है, बुरा नहीं मानना जो सास बैठी है, किसी को सास सताती है, किसी को बहू, किसी को बच्चे सताते हैं, किसी को बाप, बाप माँ कम बाप ज्यादा, बाप बैठे हैं भाई बुरा नहीं मानना, कई बाप कई बच्चे सुनाते हैं, हमारे बाप ने जब से हमने होश संभाली है हमें डांटा ही है, खुशी चली गई है। जीवन में मानसिक लेवल कुछ और हो गया है लड़कों का, लड़कियों के भी साथ यही हुआ, घर से बाहर नहीं निकलना, यहां नहीं जाना, उससे बात क्यों की, सदा दबाव में रहे, लड़कियां खुश हो रही बहुत सुन के मेरी बात, सदा दबाव में रहे हैं। हाँ, आजकल स्वतंत्रता का जमाना है जरा, पर स्वतंत्र भी पूरा तो नहीं छोड़ा जा सकता, माँ बाप की भी अपनी कोई गलती नहीं होती, लेकिन गुस्सा करना उसका इफेक्ट बहुत भारी होता है। और कुछ चीजें भी होती हैं, मैं आपकी प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूं जरा। घरों में कई माताएं गड़बड़ बहुत हो गई, कोरोना में भी गड़बड़ की, कुछ अच्छाई भी की, लेकिन गड़बड़ ज्यादा हो गई है। मोबाइल का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया, उससे मानसिक रोग बढ़ गए हैं उससे। हाँ, आंखें बिल्कुल, माताएं सुनाती हैं, कान भी आंखें भी, ब्रेन पर भी बुरा असर, डिप्रेशन के केस, हाँ चिड़चिड़े बहुत बच्चे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा घूमना फिरना खेलना कूदना, थोड़ा लड़ना झगड़ना भी चाहिए, दो चार को मारपीट करेंगे तो खुश होके घर आएंगे, ये भी है। तो कहीं कहीं ऐसा हुआ, दो चार केस मेरे पास आए कन्याओं के, बड़ी हो गई हैं, अच्छे पद पर हैं, माँ ने हमसे दोहरा व्यवहार किया, भाइयों को ज्यादा प्यार किया, हमें थोड़ा रिजेक्ट किया। तो क्या होता है, करने वाले को पता नहीं चलता, दिमाग पर बुरा इफेक्ट होता आया, अब वो खुश नहीं रहते, बड़ी समस्या हो गई, खुशी नहीं रहती जीवन में, पैसा है, अच्छे पदों पर पहुंच गए, परंतु एक निगेटिविटी का इफेक्ट जीवन पर बना हुआ है, तो हमें उसको उतारना है। अब हम एक प्रैक्टिस करेंगे, रेड लाइट कर दो भाई, जो कुछ भी मन पर बोझ इस तरह का हो, पास्ट का वर्तमान का, सब बाबा को अर्पित करेंगे। हम सीधे चलते हैं सूक्ष्म लोक, अपने को फील करेंगे आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में। सामने देखेंगे बाप दादा अपने बहुत आकर्षक प्रभामंडल के। के बीच में विराजमान हैं। दृष्टि दे रहे हैं, और बोले बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो। भगवान बोल रहे हैं अब एक दो मिनट बाबा से बात करें, जो भी पास्ट में हुआ मन पर दबाव बोझ सब उनके हवाले कर दें। बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया और कहा बच्चे डबल लाइट भव, हल्के हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। रोज एक प्रैक्टिस करेंगे, सबको करनी है रोज। सवेरे कर लें अच्छा है, दिन में कर लें, शाम को कर लें। क्या प्रैक्टिस है वो? जो भी मन पर बोझ हो बाबा से बात करेंगे और कहेंगे सच्चे दिल से इसे आप संभालो, आप ठीक कर दो। लेकिन ये कब होगा? ऊपर सुनवाई कब होगी? कहते तो सब हैं, बहुत लोग कहते हैं, हम तो बाबा को रोज कहते हैं, सुनता ही नहीं। किसकी सुनवाई होगी? नहीं, कहते तो दिल से ही हैं। बोलते जाओ, ठीक बोल रहे। जिन्होंने बाबा से गहरा नाता जोड़ा है, जो बाबा की सुनते हैं, हम सुनेंगे तभी तो वो सुनेगा। हम ही न सुनते हो, रोज कहता हो बच्चे किसी को दुख न दो, लेकिन हम सुनते ही न हो, दुख देने में आनंद आता हो तो सुनेगा। इसलिए मेरा सब कुछ तेरा, जब ये बात बाबा कहते हैं तो अधिकतर भाई बहने केवल धन की सोचते हैं और फिर सोचते हैं धन सारा कैसे दे दें, बच्चे हैं हमको परिवार। धन की, भगवान के लिए धन क्या होता है? जो इस धरा पर हीरे और सोने की बरसात करा के जाता है उसके लिए ये कागज के नोट नो वैल्यू। कुछ सूक्ष्म चीज दे देनी है उनको, अर्पित कर देना है अपनी वासनाओं को, अपने बुरे संस्कारों को, अपने अंदर जो व्यर्थ की इच्छाएं पाल के रखी है उनको। बाबा एक बहुत सुंदर बात कहते आए हैं और जो हमारे इस जीवन का मैं उसे कहूंगा बहुत बहुत सुंदर सार है, बुद्धि को स्वच्छ करो। सबसे नहीं होती है। मेरे से एक माताओं का ग्रुप मिलने आया, मैंने ये बात कही, बट्टी हुई थी, क्या सीखा पूछा, तो एक ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उसने, कि हमने अपनी बुद्धि में न जाने किस किस मनुष्य को बैठा के रखा है, बैठाना चाहिए था बाबा को, हमने किस किस को बैठा लिया, ये सीख लिया है मैंने। चिंतन करेंगे, स्वयं से बात करेंगे, एक ही तो अवसर मिला है भगवान से मिलन का, रोज करना है। ये सुंदर भाग्य मिला है हमें, उससे सब कुछ लेने का, अपने से बात करनी है। मैं आपको सुना रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये बातें रोज अपने से करनी है। बाबा ने कह दिया, बच्चे मैं अपना सब कुछ तुम्हें देकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं, तो कौन लेंगे उससे। मैं तो ऐसे सोचता था जब ये मैंने सुना कि बाबा को खाली हम करेंगे, सोचेंगे आप भी, खाली होकर जाएगा। उसका खाली होना ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब कुछ देके भी सब कुछ उसके पास रह जाता है, सारे संसार को सारी शक्तियां देकर भी सारी शक्तियां उसके पास, तो खाली वही करेंगे उसे, अर्थात उसके सर्व खजाने उसके अंदर भरेंगे जिन्होंने बुद्धि को खाली किया होगा। पहले से ही भरा हुआ है, जगह ही नहीं है। जो खजानों से भरपूर होंगे वही तृप्त आत्माएं बेफिक्र बादशाह बनेंगे। पिछली मुरली में आपने सुन लिया, नोट किया होगा, वो बहुत ही सुंदर बात है, अव्यक्त मुरली चली है। जब बाप खुद ऑफर कर रहा है, ऑफर माना कह रहा है ना, बोझ मुझे दे दो तो देते क्यों नहीं हो, कितनी सुंदर बात है। भगवान हाथ फैलाता है, लाओ सारे बोझ मुझे दे दो, और स्वयं कहता है देते क्यों नहीं हो, देंगे या नहीं। बोलो, पीछे वाले सुन ही रहे हैं केवल, देंगे। तो आज से बच्चों की चिंता बाबा की, काम धंधों की चिंता वही करेगा बिजनेस, उसको देखकर हल्के होकर खुद काम करना है। ये नहीं कि उसको दे दिया अब हमें कुछ नहीं करना है, तो उसकी शक्तियां हमारे साथ रहेंगी, हमारा बल बढ़ जाएगा, हमारी एफिशिएंसी, हमारे टैलेंट्स, हमारी योग्यताएं सब बढ़ जाएंगी। इसलिए मन को हल्का कर दें। अब देखो दो बातें, मान लो बच्चों की बातें हैं, मनुष्य अपने बच्चों के लिए कुछ कर भी तो नहीं पाता, या कर पाते हैं, क्या अनुभव है माताओं का, बच्चे गलत राह पे चल दिए, वो कुछ कर भी तो नहीं पाते उनको हटाने के लिए, और बाबा को अर्पित भी नहीं कर पाते, तो बीच का रास्ता निकालो, निकालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस परिवारों में, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात परिवारों की कर रहा हूं, बड़ी चीज तो पीछे, ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती हैं, जैसी काम धंधों की हुई कोरोना काल में, कईयों को कष्ट हो गया, कईयों का डूब गया सब कुछ, कईयों ने बैंक से लोन लेके बड़े बड़े काम शुरू किए थे, हुआ ही नहीं कुछ, बैंक वाले लोन वहां देना पड़ेगा। दिल्ली में एक परिवार, उसको इतना उसने बड़ा काम किया, 4 करोड़ रुपए हर मास देने थे बैंक को, 4 करोड़, कोरोना से पहले 2019 में किया था, कहां से लाए, सब कुछ बेचने के बाद भी नहीं, वो बड़ा होटल बनाया 25 मंजिल ऊंचा और 5 स्टार, उसको लेने वाला कोई नहीं, बेच दें चलो काम पूरा हो। तो परिस्थिति आती है ना, तो याद रखेंगे बीच का मार्ग ये है, अपनी स्थिति को जितना श्रेष्ठ बनाएंगे परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। ये भगवान के बोल हैं। जो अपने को संभाल ना जान जाए, अपनी स्थिति को संभालना, बस वो सब कुछ संभाल सकता है। स्थिति को संभालना नहीं आया, चाहते हुए भी नहीं संभाल पाएंगे। ठीक बात है या नहीं? अब स्थिति को संभालना, उसके लिए ज्ञान का बल भी चाहिए, योग का बल भी चाहिए। ज्ञान में ड्रामा का ज्ञान। अब ड्रामा के ज्ञान में एक बात बाबा सुनाते रहते हैं, सब कुछ कल्याणकारी है। देख लो कितना कितना यूज कर सकते हैं हम इस महावाक्य को, सब कुछ कल्याणकारी है। हमें तो लगता नहीं ना,
पर कल्याण सब दिखता है ना, लोग कहते हैं कि कल्याण तो कल्याण,
यही तो कि दिखता नहीं है। और भगवान बोल रहा कि सब कुछ कल्याणकारी है, किसकी मानेंगे? थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। और इसके लिए बाबा ने बहुत पहले एक बड़ी अच्छी बात सिखाई है, उसको आप ध्यान देंगे, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। या तो उस कल्याण को देख लो या पर्दा खुलने का इंतजार करो। सब कुछ व्हाट्सएप पे किसी ने एक सुंदर सी बात भेजी, टाइटैनिक एक शिप था ना बड़ा, उस पे जो डूब गया था, तो उस पे यात्रा करने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ रही थी, बुक करा रहे थे। एक किसान परिवार इंग्लैंड का, उसने बेचारे ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, जो भी इकट्ठा किया तो खर्च करके अपने पूरे परिवार के लिए सीट बुक की। लेकिन एक दिन पहले उसका लड़का इतना बीमार हो गया कि सबको छोड़ना पड़ा, पैसे वापस मिलने नहीं थे, रिफंडेबल नहीं था। अब वो बेचारा अकेला पहुंचा, शिप को जाते हुए देख रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी सारी संपत्ति चली गई। और जब उसने 2-4 दिन के बाद ये समाचार सुना, फिर भगवान को धन्यवाद देता रहा, तुमने हमें बचा लिया, वाह प्रभु तेरी लीला परंपार। बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन में, हम उसके वर्तमान इफेक्ट को देखने लगते हैं, और जो एक लंबा इफेक्ट है उसका, वो हमें मदद कर रहा है। हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि जिसने हमारा हाथ पकड़ा है और जिसका हाथ हमने पकड़ा है, ऐसा होता ही नहीं कि वो हमारी बात न सुनता हो, हमें मदद न करता हो। ध्यान से सुन ले इस बात को, होगा ही नहीं कि वो मदद न करे, ये बाबा के महावाक्य हैं। लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाते, बुद्धि में स्वच्छता नहीं है, तो वो चीजें आती नहीं है। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनना है। अब थोड़ी और सुंदर सी बातें सोचें, बाबा हमें दाल रोटी तो खिलाएगा ही, खिलाएगा या नहीं? सब कुछ चला भी जाए भूखे तो नहीं रहेंगे। और हाँ, और बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी थी, तुम बाबा को रोज भोग लगाते हो तो बाप भूखा नहीं रहता, बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। एक मुरली में हंसी भी की ना बाबा ने, रोज मुझे कितने बच्चे भोग खिलाते हैं फिर भी मैं मोटा नहीं होता। अव्यक्त मुरली में था, बाबा हंसी मजाक भी करता है बहुत। तो हम सभी बाबा पर अपने पूर्ण विश्वास को बढ़ाएं। और एक खराब सी बात कहना चाहता हूं, है अच्छी पर थोड़ी खराब है सुनने में, बता दूं। अपने को तैयार करना है, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो सब खत्म होगा। सोच लो, आंखों से तो सब कुछ दिखता है ना
भाई जी, सब लोग आजकल बोलते बॉम्बे का क्या?
नहीं, बॉम्बे लास्ट में जाएगी, जल्दी नहीं, जल्दी चिंता ना करो, आपका सागर के किनारे है, जल्दी नहीं जाएंगे, जल्दी नहीं जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, मैं आपको एक राज ही बता देता हूँ। ये जो धरती है, नो टेंशन, धरती 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी है ना, जब ये सीधी होगी तभी धरती डामाडोल होगी और सागर इधर का उधर हो जाएगा। ये बहुत लोगों की गैस था, उनका चिंतन था कि अरब कंट्रीज और भारत के बीच में जो सागर है ये नहीं रहेगा, जमीन हो जाएगी, तो भारत की सीमाएं बहुत दूर तक जाएंगी। तो ये धरती सीधी बिल्कुल एंड में होगी, जब एकदम समाप्ति का समय है। इसलिए कोई चिंता बॉम्बे वालों को करने की जरूरत नहीं है, मौज से रहो, सुख से रहो, खूब खाओ पियो, निश्चिंत हो जाओ। थोड़ा बहुत होता रहेगा, लेकिन संपूर्ण जो चीज है ये रहस्य आपको याद रखना है। भारत का साउदर्न पार्ट ये सभी सागर में चला जाएगा। और क्योंकि ये जो सागर है ना, अरब कंट्री, अरब सागर, इसमें हीरे मोती बहुत हैं, वो कहाँ आएंगे, सब इधर आ, तो बॉम्बे वालों को तो भंडारे भरपूर हो जाएंगे वैसे। नहीं, जल्दी तो नहीं होगा, जल्दी नहीं। हाँ, वो उधर हिंद महासागर बहुत बड़ा लंबा छोटा उधर है ना, ये छोटा है। मिली, हम लोग दुबई में गए तो एक छोटा सा म्यूजियम दिखाया, उसमें भारत की प्राचीन सभ्यता दिखाई गई। ये देश तो अभी अभी बढ़े हैं ना, और हमें ये कुछ नहीं सोचना कि तालिबान आ गया पता नहीं क्या करेगा। हर चीज रोज बदल रही है, हर एक का मन बदल रहा है, और हिसाब किताब भी तो चुकतू करने हैं ना, चुकतू करने। मैं इसको दूसरी दृष्टि से भी देख रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं सुनाऊंगा नहीं। तो ये सब कल्याणकारी हो रहा है, ये सब हिसाब किताब चुकतू करने के तरीके हैं। तो बेफिक्र हमें रहना है, रोज की प्रैक्टिस हो, क्योंकि रोज कोई ना कोई फिक्र आता है। रोज प्रैक्टिस करो, बाबा को दे दें, सोने से पहले लिख कर दे दो, ये बात आ गई है आप संभालो, लेकिन अपने में और बाबा में पूरा विश्वास, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निश्चय अलग है, निश्चय तो सबको होता है, बाबा आ गया है, ज्ञान दे रहा है, विनाश भी होगा, स्वर्ग भी आएगा, ये तो सबको है, लेकिन विश्वास एक बड़ी चीज होती है। बाबा करेगा ही। एक कुमार मुझे अनुभव सुनाता था, सूरत का है, कैंसर हुआ उसको। कैंसर में रीढ़ की हड्डी से कोई लिक्विड निकालना होता है चेकअप के लिए, और वो इंजेक्शन मोटा होता है, अति भारी, कष्टदायक, किसी को जाने नहीं देते अंदर, पकड़ लेते हैं, दो चार लोग पकड़ लेते हैं, हिले भी नहीं। एक बार इंजेक्शन दिया, निकला ही नहीं, कोई नहीं आ सकता। अब डॉक्टर भी बेचारे दुखी हो जाते हैं ना, वो भी तो मनुष्य है ना। दूसरी बार दिया दूसरी जगह, निकला ही नहीं। अब डॉक्टर सोचने लगे, क्या करें भाई, पेशेंट को कष्ट हो रहा है। उसने कहा, बाबा किसी को तो नहीं आने देते, पर आपको आने से कौन रोकेगा, आ जाओ। और उसने कहा लगाओ तीसरी बार भी, कोई नहीं बताया उसने, मैंने बुला लिया है किसी को, वो देखें किसको बुला लिया है। और तीसरी बार बिना कष्ट के इंजेक्शन वो निकल गया, बहुत अच्छा उसका अनुभव था ये कैंसर पर उसकी विजय। युवक, ज्यादा आयु नहीं, 25 साल का। तो बाबा में बहुत विश्वास, रोज अपने घरों में अपने पास बाप दादा को बुलाओ, इस चीज को मिस नहीं करना है। ऐसी आदत पड़ जाए कि कुछ भी हो जाए आ जाओ, आदत नहीं तो भूल जाएंगे ना। और ये अच्छे अनुभव रहेंगे, परफेक्ट अनुभव, बाबा आ जाएंगे और बाबा का आना और बहुत कुछ ठीक होना ये हम देखेंगे। अपने को शक्तिशाली बहुत बनाना है तो रोज अपनी बातें बाबा को दे के ही सोना है। ये बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। बाबा ने तो इतने तक कह दिया व्यक्त में कि रोज रात को जो कुछ भी हुआ है, गलती भी हुई है, पाप हो गया है, सब बाबा के हवाले करके सो जाओ तो धर्मराजपुरी से भी बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। बाबा लेने को तैयार है सब कुछ, हमें देना है पूर्ण विश्वास के साथ। बच्चों की जिम्मेदारी और कई चीजें भी, जो भी आपको भारी करती हैं, चाहे शरीर की बीमारियां हो, बाबा को अर्पित करें। और पढ़ाई लिखाई की ज्यादा चिंता नहीं करेंगे बच्चों की, वो भी मैं नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि मैं जानता हूं कि एजुकेशन का इतिहास अब पूरा हो रहा है। क्यों, आप तो एजुकेशन में हो ना, पूरा हो रहा है। चिंता है इसको? नहीं, इसको कोई चिंता नहीं। ये 100-125-150 साल की तो एजुकेशन है, पहले थोड़ा एजुकेशन होती थी। और बिना एजुकेशन के लोग कितने बुद्धिमान थे, आपके महाराष्ट्र में भी संत तुकाराम कितने पढ़े थे, देखा था स्कूल का दरवाजा, और उनके अभंग, मराठी में अभंग कहते हैं ना, क्या डीप फिलोसॉफी है उसमें। तुलसीदास जिसने रामचरितमानस लिखी, संत ज्ञानेश्वर, सूरदास तो अंधा था, हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, उसके कवित्व में छंद रस साहित्यिक पुट सब है, कितना पढ़ा था। चलो कालिदास तो गुरुकुल में भी, वो भी नहीं गया था, कबीर कितना पढ़ा था, कितने डीप फिलोसॉफी है उसके दोहों में। तो पढ़ाई विजडम नहीं दे रही है, जीवन भी नहीं दे रही है, थोड़ा ट्रैक बदल गया है एजुकेशन का। तो अब ये समाप्ति की ओर है, दैवी सभ्यता आने वाली है, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हल्के रहेंगे थोड़ा। इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे कि पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि ये भी होता है। कल एक माता आई, उसकी लड़की 7 साल की, वो पढ़ती नहीं है, मेरे को कहा ये पढ़ती नहीं है, तो फट से कहा आपने ही तो कहा अभी ये खत्म हो रहा है, पढ़ के क्या करूंगी। अम्मा बेचारी मुझे भी देखे उसे भी देखे। तो इसका अर्थ ये नहीं, जब तक हैं, पढ़ाई एक विवेक देती है, हमारी ब्रेन को जागृत करती है, ये बातें याद रखते हुए। अच्छा पढ़ना है, सभी बच्चों को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ना है। हाँ, और फिर अच्छा रहता है, बच्चे घर में रहेंगे तो देख लिया ना घर में रह के क्या हाल होता है, हिले स्कूल जाते हैं, चुस्त रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी बहुत कुछ होता है, उनको सीखते हैं वो बहुत कुछ। तो हल्के रहना है, निश्चिंत जीवन। बाबा का दूसरा महावाक्य याद कर लें, ड्रामा में सब कुछ पहले से ही निश्चित है, ये तीनों शब्द समान है ना, ये निश्चय होगा तो निश्चिंत रहेंगे। परंतु ये बात थोड़ी सी कठिन पड़ती है, सब कुछ निश्चित है। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है प्रीडेस्टाइंड, बना बनाया है। भारत में तो ये बातें कहावतों के रूप में बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आई, लेकिन इस पट्टे पर चलना थोड़ी मेहनत है। तो रोज प्रैक्टिस करेंगे, ड्रामा की भी कम से कम 5 ऐसी बातें नोट कर लें अपने पास, जिनकी प्रैक्टिस होती रहे जीवन में। जैसे हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना भाग्य है, याद रखेंगे। आत्माएं जो आपके परिवार में आई हैं या जो आ रही हैं, वे वही आ रही हैं जिनसे आपका गहरा कर्मों का नाता है, खाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। मैं तो देखता हूं कई माताएं कॉन्टेक्ट करती हैं, मुझे आश्चर्य लगता है, 3 साल की लड़की मुझे बहुत तंग कर रही है। मैं पूछता हूं 3 साल की लड़की तुम्हें तंग कर रही है, मेरी तो समझ में नहीं आता भाई। बहुत गुस्सा करती है, शब्द है उनके, थोड़े केस आते हैं पर आते हैं, ऐसा लगता है मुझे खा जाएगी, आंखों में भी गर्मी। क्यों बताओ क्यों? मैं उन्हें सिखाता हूं और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कहा आपने इसको बहुत सताया है, बदला लेने आई है, इसको याद आ गया ये वही है। इसलिए इससे क्षमा याचना करो। 7 दिन करते ही मैंने कहा बच्ची के पास जाना, जब वो सोई हो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाना, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मैं अभी रियलाइज करती हूं, मुझे क्षमा दान दो, सुखी हो जाओ, हमारे घर में आप आई हो, हम आपको बहुत प्यार देंगे, पालना करेंगे, अब गड़बड़ नहीं होगी। ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड बच्चों का बहुत एक्टिव होता है, जब वो सोए हैं तब खास। इसलिए जो संकल्प आप उनको दे देंगे तुरंत ग्रहण होगा। मैंने तो कभी कभी एक अच्छी बात सुनाई है, वंडरफुल बात है वो। पंजाब में एक बहन आती है ज्ञान में, सोशल वर्कर है, तो हमारे स्पार्क के ग्रुप में आती है। उसने मुझे सुनाया कि एक माता के गर्भ में बच्चे की पोजीशन उल्टी थी। डॉक्टर कहते भाई क्या करें, ऐसा तो कभी होता नहीं, या तो मां जाएगी या बच्चा जाएगा। अब वो बेचारे परेशान, पहुंच गए इसके पास किसी तरह। किसी ने कहा वो बहन है, अभी ज्ञान भी लिया उसने ब्रह्मा कुमारियों का, देखो कुछ राय दे तो अच्छा। इसने कहा कि ये मां उससे क्षमा याचना करे, हाथ जोड़ के कि तुम हमारे घर में जन्म लो, हम तुम्हें बहुत प्यार देंगे, तुम्हारी बहुत पालना करेंगे, जो कुछ हुआ हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप बहुत सुखी रहेंगी हमारे घर में। और आपको ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, 10 दिन के बाद जब सोनोग्राफी हुई, क्योंकि ऑपरेशन था, बच्चे की पोजीशन राइट हो गई थी। अब वो कहें ये क्या हुआ भाई तुम्हें, ये किसने कर दिया? तो ये क्षमा याचना इतनी सुंदर बात है, बच्चों को आप बदल सकते हैं। जब वो सोए हैं, मैं ये विधि कुछ दिन से कह रहा हूं सबको, और सभी अपने परिवारों में पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए इसको यूज करेंगे आप। सवेरे जल्दी उठकर, चाहे तो उनके पास हो जाओ, बॉम्बे में तो ज्यादा कमरे नहीं होते, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सबको आत्मा देखो और थोड़े से अच्छे वाइब्रेशंस दे दो। वाइब्रेशंस देने का तरीका है, बाबा की किरणें मुझे आई और मुझसे सब पर पड़ने लगी। 5 मिनट भी कर देंगे और फिर मन से बातें करो। और पहला संकल्प करना है, तुम सभी बहुत अच्छी आत्माएं हो, हमारे कुल के दीपक हो, बहुत अच्छे हो, तुम देवकुल में थे, तुम्हारे यहाँ आने से हमारे घर की शोभा बढ़ गई है। अब आगे जो कुछ आप संकल्प देना चाहते हैं वो दे दें उन्हें। 7 दिन में ही अगर आप सेम टाइम करें रोज, तो 7 दिन में ही परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छी विधि है। तो हमें निश्चिंत रहना भी है, करना भी है, क्योंकि अगर किसी भी चिंता में हमारा समय गुजरेगा तो बाबा से हम सुख नहीं ले पाएंगे। चिंता तो बढ़ती जाएंगी दुनिया में, सब खेल खत्म होने वाला है। बाबा तो हंसते बहलते कहता ही है, तुम ही तो कहते हो दुख हरताओ, सबका दुख हरो, तो मैं दुख हरने के लिए दुखों की दुनिया को ही खत्म कर देता हूं, सुखी रहो मेरे बच्चे। अब सब विनाश होके उसके पास जाएंगे, वो तो खुश होगा ना, मेरे बच्चे मेरे पास आ गए, बहुत दिन दूर रहे थे, आ जाओ बच्चे ऊपर आ जाओ। उसके लिए विनाश क्या है, खेल है। अनंत बार उसने ये खेल देखा है। मैं इस तरह सोचा करता हूं कि मान लो अनंत बार में से 10,000 बार उसने ये खेल देखा है, तो जो खेल 10,000 बार देखा जाता है कैसा लगता है, रुचि भी नहीं रहती, और ठीक है वैसे ही तो होगा। हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। थोड़ा सा अपनी स्मृतियों को जागृत करेंगे तो संगम युग पे थोड़ा जोर लगाएंगे। बाबा साकार में लास्ट दिनों में कहते थे, रात्रि क्लास में होती थी वो बातें, बच्चे बाप से रजाई लेने के लिए 200 नाखूनों का जोर लगा दो। ब्रह्मा बाबा ने लगाया था जोर, ऐसे ही नहीं विश्व महाराजन बने, नेक्स्ट टू गॉड हो गए, भगवान ही हो गए, भाग्य विधाता। ब्रह्मा बाबा की पोजीशन कोई छोटी मोटी थोड़ा ही है। तो हम भी जोर लगाएंगे तो अपने को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे, ज्ञान से भरपूर शक्तिशाली। और मैं एक चीज आजकल और करा रहा हूं जो बाबा ने बहुत पहले से कराई है, अपने चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल बनाना, ओरा। इससे अनेक चीजों से हम सेफ रहेंगे, क्योंकि आजकल एक चीज और बढ़ रही है, भटकती आत्माओं के प्रकोप। मैं सभी को इसके लिए कहना चाहता हूं, उससे घबराना भी नहीं है, सेंटरों में बहुत होने लगा है। और मुझे किसी ने बताया कि सेंटरों में ये आत्माएं कष्ट देने नहीं आ रही हैं, शांति के लिए, मुक्ति के लिए। कई जगह तो प्रवेश करके आत्माओं ने कहा, हम 10 हैं, हमें मुक्ति चाहिए, आप लोग ही दे सकते हैं। और बहनों ने योग अभ्यास किए, मुक्त हुए, फिर आए और धन्यवाद देके गए, कहा हम जा रहे हैं, पुनर्जन्म हमें मिल रहा है। तो हमें डरना नहीं है इनसे, लेकिन अपने चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बनाना है। अपने घर को भी आप आभा मंडल में बांध सकते हो। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, पूरे घर के चारों ओर फैल गई ये किरणें, और पूरा घर इन किरणों से भर गया, ये आभा मंडल हो गया, इसमें कोई बैड एनर्जी आ नहीं सकती, संकल्प कर दो। तो निश्चिंत अपने को धीरे धीरे करेंगे, बस यही करेंगे, मेरा तेरे में बदल देंगे। एक अच्छी प्रैक्टिस है रोज की, बहुत कुछ होता है मनुष्य को, मेरा तो एक ऐसा घर कर गया है ना सबके अंदर। बीमारी भी होती है तो मनुष्य थोड़ा परेशान होता है, लेकिन अगर बाबा को अर्पित कर दें, सुप्रीम सर्जन है, मैं ऐसे कहता हूं, कहता ही नहीं मैं करता हूं, बाबा कहता है मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने थोड़ा ही आया हूं, लेकिन सब कहते तो है ना बाबा ठीक करो हमें, तो वो करता नहीं, बोलो अगली लाइन, कराता है। तो अपनी बीमारी को भी उसके हाथों में सौंप दो, सुप्रीम सर्जन अब करो कुछ, करा देगा। मेरे को इसके बहुत अनुभव है, कम से कम 100 और रोज होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। कहता हूं सुप्रीम सर्जन अब तुम्हें ही करना है, और कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक हो जाते हैं। हवाले करते चलेंगे अपने को उसके, ये शब्द कभी नहीं भूलना है। जिसकी जो भी समस्याएं हैं, पति बंधन डालता है, माताओं को होता ही है, लेकिन बाबा को अर्पित करने के साथ उसे अच्छे वाइब्रेशंस भी देंगे तो हमारा जीवन निश्चिंत होगा और हम इस संसार में ऐसे विचरण करेंगे। मस्त फकीर, दादी जानकी को कहते थे बाबा, कोई चिंता नहीं, विनाश होगा, भयानक स्थितियां होंगी, लेकिन हमारा रोल होगा, बोलो, सबको देने का, सुरक्षा भी देनी होगी। मैंने विदेश में 2 दिन पहले क्लास थी तो उन्होंने कहा हमें अब डिस्कस करना है आपस में, तो 1-2 टॉपिक दे दो आप, बस ये लास्ट बात कर रहा हूं, फिर योग करेंगे। तो मैं सोचा नहीं था, मुझे अचानक ख्याल आ गया, विनाश काल में हम अपना पार्ट क्या देखना चाहते हैं, चिंतन करो, समझ गए ना, अपना पार्ट खुद बनाना है। ये नहीं बाबा हमसे जो कराएगा, इसमें समर्पण भाव नहीं, हमें अपने को तैयार करना है और बाबा को संकल्प भेज देना है कि मैं महाविनाश काल में ये पार्ट प्ले करना चाहती हूं। उसकी तैयारी भी करेंगे क्योंकि साक्षात्कार कराने हैं। मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, दवाई नहीं है, वाइब्रेशंस देकर ठीक करना है। मैंने 5 चीजें रखी थी अपने पास भी, आपको भी थोड़े में सुना दो। किसी को विघ्न विनाशक गणेश बनना है। आपके बॉम्बे का एक जज आया था, बड़ा सबसे एक प्रश्न पूछता फिर रहा था, कहा शंकराचार्यों से पूछा है कि ये गणेश जी तो एक हैं, ये अष्ट विनायक कहां से आ गए, मंदिर है ना आपके यहाँ, मैं भी देख के 8 मंजिला है शायद, ये 8 गणेश क्यों। मैंने कहा जानता तो मैं हूं पर आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। उसने सुना और मान लिया यही सत्य है। तो कोई विघ्न विनाशक बनने का पार्ट बजाएगा, कोई अपनी दृष्टि से रोग निवारक बन जाएगा, दृष्टि देंगे रोग समाप्त हो जाएंगे, कोई वाइब्रेशंस देकर दूसरों को सुला देगा, सोएंगे नहीं लोग, दवाई भी नहीं मिलेंगी, इतनी दवाइयों की मांग होगी कहां से लाएंगे, मिलेंगी भी नहीं, जैसे वैक्सीन नहीं मिल रही थी ना और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सोने की दवाई तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। कोई दूसरों के दुख हर्ता बन जाएंगे, कोई सिद्धि दाता, कोई वरदान देने वाले। तो 8 ये अश्रतनी है, इनका पार्ट अलग अलग होगा। और मैं आप सबको कहूंगा अपना कोई एक पार्ट चुन लो कि मुझे ये करना है। हाँ, सिद्धि विनायक है ना, तो सिद्धि देंगे, सिद्धि वो देंगे जिन्होंने लंबे काल से बाबा से वरदान प्राप्त किए होंगे। चलें अब हम योग करेंगे, पावरफुल रेड लाइट, और ये अभ्यास आप रोज किया करेंगे। सुंदर स्वमानों से शुरू करते हैं, बाबा के महावाक्य, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, मैं संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा। जो भगवान का साथ मिला वे हमारी छत्र छाया बन गए, जिसने आकर हमें सच्चा सुख प्रदान किया, कहा तुम इस सृष्टि पर लाइट हाउस हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारे प्रकाश से संसार का अंधकार दूर हो रहा है। देखें स्वयं को भ्रकुटी की कुटिया में, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। चारों ओर किरणें फैल रही हैं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के थोड़ा ऊपर, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। यहां से मैं आत्मा फील करें, मैं निराकार देह जैसे कि है ही नहीं, और मेरे चारों पावरफुल आभा मंडल उड़ चली अपने धाम। देखें ऊपर चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश, ये शांति धाम शांति के सागर की शांति की तरंगे चारों ओर फैल रही हैं। मैं उनके नीचे हूं, परमात्मा शांति मुझ में समा रही है। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। प्रकृति हमारे प्योर वाइब्रेशंस की प्यासी है। प्योर वाइब्रेशंस इसकी आंतरिक शक्ति है। बाबा से पवित्रता के सागर से पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि पवित्र वाइब्रेशंस की बरसात हो रही है, ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आकाशमंडल इन पवित्र गोल्डन किरणों से भर गया है। Thank you. होकर बह रही है। ये पवित्र किरणें मेरे ब्रेन में और पूरे शरीर में फैल रही हैं। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। तुम बन जाओ बेफिक्र बादशाह। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। परम सुखकारी दृष्टि विघ्नों को नष्ट करने वाली दृष्टि
I'm
बहुत सुंदर सूरज भाई के सानिध्य में योग भी किया और बेफिक्र बादशाह बनने की विधि भी समझी। भाई जी को एक हाथ हिलाकर शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं। ये कृपया आप लोग अपने मोबाइल का ध्यान रखेंगे स्विच ऑफ या तो साइलेंट। एक ट्रैफिक कंट्रोल हो गया और उसके बीच में दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, दिस इज नॉट गुड। साइलेंट तो रख सकते हैं।